नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय संघर्ष राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात के हजारों निवासियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित विशाल योग सत्रों ने सामुदायिक स्थलों को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्रों में बदल दिया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुबई पुलिस के सहयोग से दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में परिवारों, स्कूली बच्चों, अनुभवी योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों सहित सभी आयु वर्ग के 1,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दुबई पुलिस बैंड द्वारा एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के अंतर्गत मनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। श्री गोयल आज मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इससे भारत के निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में उच्च स्तरीय सीधी बातचीत शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हुए कमजोर अंतरिम समझौते को मजबूत करना और पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि यह जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी उपराष्ट्रपति ने ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय स्थिरता और महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर केंद्रित रही। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अमरीका और ईरान के संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास आराघची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ आलोचक श्री एंडी बर्नहम को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी इंग्लैंड के मेकरफील्ड उपचुनाव में बर्नहम की निर्णायक जीत के बाद यह मांग और तेज हो गई। उन्होंने नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को हराकर भावी नेता के रूप में अपनी साख मजबूत की है। इस बीच श्री स्टार्मर ने कहा है कि वे पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे और नेतृत्व के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व के लिए कोई चुनाव होता है तो वे पद छोड़ने के बजाय चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वी परवान प्रांत में एक वाहन पलटने से 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फजुल रहीम मुस्कनियार ने बताया कि यह दुर्घटना कोही सफी जिले में मंडी कोल इलाके में हुई, जब वाहन में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण चालक को नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। घायलों को इलाज के लिए काबुल के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।